प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया, तुझसे जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों इफिसियों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और एक अध्याय उसके 5 और 6 पद से अपने अध्ययन को आरम्भ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज का वचन हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के तकलीफ और पीड़ाओं में हैं, आप उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान कीजिए ताकि आज वे भी आपकी चंगाई को प्राप्त कर सकें। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो आइए हम इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ें। लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। ध्यान दीजिए, अब आप क्या कहेंगे, यहां पहले से ठहराने वाली बात है? मेरे मित्रों, यह तो धर्मशास्त्र के अति महान शब्द हैं। यह एक महिमामय मार्ग है। आज हम इस विषय अधिक चर्चा नहीं सुनते हैं। यदि मैं बाइबल अध्ययन नहीं करवा रहा होता तो मैं इसे छोड़ देता और अन्य कोई विषय चुनता। मैं पवित्र जनों की सुविधा की चर्चा करता जो आज एक महान विषय है। रूढ़िवादी प्रचारक भी इस पर प्रचार करते हैं। हम सब शांति की बातें करते हैं, परंतु यहाँ एक बड़ी औषधि है। कुछ लोग इस औषधि को नहीं खाना चाहते हैं, परंतु यदि आप इसे खाएंगे तो यह लाभकारी ही होगी। हमें आज के इस ओछे युग में बड़ी औषधि की ही आवश्यकता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम मसीह में चुने गए हैं कि आज परमेश्वर के समक्ष खड़े हो पाएं। इससे आपके जीवन में महान अंतर आएगा। जी हाँ, हम इफिसियों के शिखर पर विचरण कर रहे हैं। हम उस समय को देख रहे हैं जो आदिकाल से पूर्व का है, जब परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाया था। मैं तो वहां था नहीं, ना ही आप थे कि उसे हम कुछ सुझाव देते या उसे बताते कि मेरे विचार में उसे क्या करना चाहिए, परंतु वह हमें बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सारांश में परमेश्वर हमसे कहता है, तुम इसे स्वीकार करो या इसका इनकार करो। मैंने तो ऐसा ही किया है और शायद तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि इस जगत का संचालन तो मैं ही करता हूं। परमेश्वर ने जगत का प्रबंध किसी राजनीतिक दल के हाथ में नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, न ही उसने किसी एक मनुष्य के हाथ में जगत का प्रबंध दिया है। उसने मेरे हाथ में भी इसकी व्यवस्था का काम नहीं सौंपा है। अतः हम सब एक आवाज में आमीन कह सकते हैं और उसे धन्यवाद कह सकते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया है। तथापि कलीसिया का नक्शा बनाने में परमेश्वर ने हमारे लिए 3 काम किए हैं। पहला, उसने हमें चुना, यह हमारे स्वीकारण हेतु कठोर बात है। दूसरा, पिता ने हमें पुत्र होने के लिए पूर्व नियुक्त किया है। तीसरा, पिता ने अपने प्रिय में हमें स्वीकार बनाया है। मेरे प्रियो, मैं कहते हुए थकता नहीं कि चुनाव का अर्थ है परमेश्वर द्वारा मसीह में हमारा चुना जाना। मैं फिर बल देकर कहता हूं कि मनुष्य चुना नहीं गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया है। मनुष्य के खो जाने का कारण है कि वह पापी है और यही वे चाहते हैं और चुनते भी हैं। परमेश्वर के इस चुनाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं किया गया है। खोया हुआ मनुष्य अपना चुनाव स्वयं करता है। अगस्तीन ने कहा था, यदि परमेश्वर में स्वतंत्र इच्छा का अनुग्रह नहीं होता तो वह संसार का उद्धार कैसे कर पाता, और यदि मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा नहीं होती तो परमेश्वर संसार का न्याय कैसे करता। यहां फिर पौलुस की वही कठोर बात आती है, रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 14 पद में, तो फिर हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं। अतः यदि आपके विचार में परमेश्वर अन्यायी है तो आपको अपना विचार त्यागना होगा। आज के प्रचार अभियानों में मुझे एक बात दिखाई देती है कि मनुष्य वेदी पर आता है और उनके इस काम में वह कुछ करता है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर कह रहा है वह वेदी पर आने वालों को उद्धार नहीं देता, या क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं या हम कलीसिया के सदस्य हैं, या हम में उसके निकट आने की इच्छा है। परमेश्वर कहता है कि हमारा उद्धार इसलिए हुआ है कि उसने दया दिखाई है। उसने मूसा से भी यही कहा था। मूसा तो परमेश्वर से कहने योग्य था, देख मैं मूसा हूँ, मैं इसराइल के वंशजों को मिस्र से निकाल कर ला रहा हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे बिना तुझे कठिनाई होगी, अतः मैं यह चाहता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुन। आप पढ़ें तो समझ में आएगा कि मूसा की प्रार्थना ऐसी नहीं थी। परमेश्वर ही ने उससे कहा था, मैं जिस पर चाहता हूँ दया करता हूँ और जिस पर चाहता हूँ कृपा दिखाता हूँ। उसने मूसा से कहा कि वह उसकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा, परंतु इसलिए नहीं कि वह मूसा था, परंतु इसलिए कि यह दया करने वाले परमेश्वर की बात है। रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 16 पद में हम इसे पाते हैं। मेरे मित्रों, एक दिन मैं स्वर्ग में होऊंगा, परंतु इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छा मनुष्य हूं, कभी नहीं। आप मुझे या मुझसे अच्छा नहीं जानते, यदि जानते होते तो तुरंत मेरा कार्यक्रम बंद कर देते। परंतु एक पल रुके, यदि मैं आपको उतना जानता जितना आप स्वयं को जानते हैं तो मैं आपसे बात भी नहीं करता। अतः हम साथ बने रहें, हम दोनों एक ही नाव में हैं, हम सब खोए हुए पापी हैं। मैं स्वर्ग में इसलिए नहीं होऊंगा कि मैं एक प्रचारक हूं या कलीसिया का एक सदस्य हूं, इसलिए कि मेरा छिड़काव या डुबकी का बपतिस्मा हुआ है, मेरी पत्नी ने डुबकी का बपतिस्मा लिया है या नहीं, और इससे इस पर गौरव है या नहीं। मैं उसे छेड़ते हुए कहता हूं, यदि स्वर्ग में हमें पता चले कि प्रभु ने छिड़काव का बपतिस्मा कहा था, तब तो वह बाहर हो जाएगी। मेरे मित्र भी ऐसा ही कहते हैं, मैंने दोनों प्रकार का बपतिस्मा पर जोर दिया है, अतः मैं तो सुरक्षित हूं। यह तर्कहीन विवाद है। बपतिस्मा स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, जैसा कि आज बहुत सारे लोग सोचते हैं। मेरा स्वर्ग प्रवेश केवल परमेश्वर की दया है, मैं एक खोया हुआ पापी हूं। जब तक हम परमेश्वर के पास नगण्य व्यक्ति स्वरूप न आए और वह हमें कुछ न बना दे, तब तक हमारा उद्धार नहीं है। मेरे मित्रों, आपके दृढ़ संकल्पों का त्याग आवश्यक है, आपको सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं का निराकरण आवश्यक है। आपको कभी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपका कभी उद्धार होगा, जब तक कि आपने पहले यह ना जाना कि आप खोए हुए हैं। एक खोए हुए पापी के लिए ही परमेश्वर अपनी दया दिखाने को तैयार रहता है। मुझे यह न कहें कि आपके साथ बौद्धिक समस्याएं हैं, निवारण हेतु बाधाएं हैं। हमारी समस्या यह नहीं कि योना या नूह के नाव के साथ हमें समस्या है। हमारी समस्या तो यह है कि बाइबल हमारे जीवन में पाप को दोषी ठहराती है। परमेश्वर आपका उद्धार तब करेगा जब आपका मन उसके निकट आने का इच्छुक है। उसने ऐसी ही योजनाएं बनाई है जिससे कि वह आपको और मुझे एक दिन स्वर्ग में ले आए। जब हम स्वर्ग में होंगे तब हमें समझ में आएगा और हम समझ पाएंगे कि वही है जिसने यह सब किया है। अब पद 5 में हम परमेश्वर द्वारा हमारे लिए किए गए दूसरे काम पर आते हैं, हमें अपने लिए पहले से ठहराया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप पूर्व नियुक्त हैं और एक ही स्थान में रहकर प्रेम करेंगे, इस पद को तो छोड़ दीजिए। परंतु बात यह है कि परमेश्वर का प्रेम इस संसार में व्याप्त है, जो अनेकों के लिए भयावह है, पहले से ठहराया। यह यूनानी शब्द से आया है जिसका व्यक्ति के या वास्तविक अर्थ है पृथक करना। जब यह परमेश्वर के संदर्भ में हो तो इसका अर्थ है परमेश्वर का उद्देश्य, उसके चुने हुओं के साथ उसका उद्देश्य, पहले से ठहराया। उद्धार से रहित मनुष्यों के लिए कभी काम नहीं आता है। परमेश्वर ने कभी किसी को पहले से नहीं ठहराया कि वे खो जाएं। यदि आप खो जाएं तो केवल इसलिए कि आपने परमेश्वर की औषधि का इनकार किया है। यह ऐसा है जैसे डॉक्टर किसी मरने वाले रोगी से कहता है, यदि तुम यह दवा खाओगे तो बच जाओगे। वह रोगी आश्चर्य से डॉक्टर को देखकर कहता है, मैं आपका विश्वास नहीं करता। अब वह रोगी मर जाता है और डॉक्टर कहता है कि वह किसी रोग के कारण मर गया। अब सच तो यह है कि वह दवा ना खाने के कारण मर गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें उपचार दिया है। मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर ने पहले से किसी को नहीं ठहराया कि वे खो जाएं। अब यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपना चुनाव करें। मेरे प्रियो, पहले से ठहराया जाना केवल उद्धार के लिए है। इसका अर्थ वास्तव में यह है कि जब परमेश्वर 100 भेड़ों को लेकर चले तो वह पूरी 100 भेड़ों के साथ ही पहुंचे। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। डॉक्टर आर ए टोरी कहते थे कि थके हुए मन के लिए यह एक महान तकिया है, वे जो उसके उद्देश्य के निमित्त बुलाए गए हैं। परमेश्वर के पुत्र के रूप में परिवर्तन होने के लिए पहले से ठहराए गए हैं। हम उद्धार प्राप्त मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं। रोमियो की पत्री में पौलुस समझाता है कि यह कैसे होता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर 100 भेड़े लेकर चलता है तो 100 भेड़ों के साथ ही पहुंचेगा। आप मानेंगे कि यह एक अच्छा अनुपात है। मुझे एक भेड़शाला वाले ने बताया कि यदि वे 65% भेड़े बाजार में पहुंचा दे तो उन्हें लाभ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक भेड़ मर भी जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया कि एक चरवाहे की 100 भेड़े थी और उनमें से एक खो गई। क्या आप जानते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी हम में से अधिकांश खो जाते हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि हम उद्धार से वंचित हो जाते हैं, परंतु निश्चय ही हम उसकी सहभागिता से अलग हो जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की सहभागिता से इतना दूर हो जाते हैं कि उन्हें उद्धार से वंचित होने का भय हो जाता है, परंतु भेड़ कितना भी दूर जंगल में हो वह एक भेड़ ही होती है। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। यह हमारी प्रवृत्ति है, हमारी मानसिकता है। हम इसी मार्ग पर चलते हैं। हम परमेश्वर की ओर चलने की अपेक्षा उससे दूर चलते हैं। अब चरवाहा क्या करेगा? वह उस एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए निकलेगा। मेरे विचार में आज का चरवाहा एक भेड़ के लिए तूफानी रात में बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा चरवाहा ऐसा नहीं सोचता है। वह कहता है, मैं 100 भेड़े लेकर चला था और 100 भेड़े ही पहुंचाऊंगा। अब मान लीजिए कि वह दिन आए जब वह स्वर्ग में अपनी भेड़े गिने और देखे कि एक भेड़ कहाँ गई। खो गई तो खो गई, वह तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी। नहीं, वह ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वह मुझे खोजने के लिए निकलेगा और मुझे लेकर ही लौटेगा। यही पहले से ठहराया जाना है। मुझे यह बहुत ही अच्छा लगता है। यह परमेश्वर की गारंटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। सदा स्मरण रखें कि भेड़ों का यदि उद्धार होता है तो इसलिए नहीं कि वे चतुर भेड़े हैं, वे मूर्ख भेड़े हैं। यदि वे सुरक्षित हैं तो केवल इसलिए कि उनका चरवाहा बहुत अच्छा है। यह एक महिमामय सत्य है। हम पहले से ठहराए गए हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। लेपालक का अर्थ है हम पूरी तरह विकसित पुत्र के स्थान पर लाए गए हैं। हम इस विषय गलातियों की पत्री में चर्चा कर चुके हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण अभिप्राय हैं। लेपालक पुत्र होने का अर्थ है नया जन्म होना। हमें परमेश्वर की आत्मा द्वारा नया जन्म प्राप्त होता है, परमेश्वर की संतान का नया जन्म होता है, जो पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 23 पद के अनुसार है। नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा होता है। वह एक नए संबंध में जन्म लेता है। यीशु ने निकोदिमुस से जब कहा था कि उसे नया जन्म लेना होगा, तो उसके कहने का अर्थ यही था। जी हाँ, लेपालक का अर्थ एक पदास्थान और सौभाग्य भी है। उद्धार पाकर हम परमेश्वर के परिवार में मसीह में शिशु हो जाते हैं, परंतु इसके साथ ही हमें एक पूर्व विकसित युग का एक वयस्क का स्थान प्राप्त होता है। हम परमेश्वर के वचन को समझने योग्य हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें एक शिक्षक पवित्र आत्मा देता है। मेरे मित्रों, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उनका पोता जब 2 वर्ष का था तब वह बहुत बातें करता था, परंतु मैं कुछ शब्द ही समझ पाता था, परंतु मुझे पूरी तरह समझ में आ जाता है कि उसे क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है। वह तो एक अबोध बालक था और समझ नहीं पाता था कि मैं उसकी बातें क्यों नहीं समझ पाता हूं, और वह भी मेरी बातें प्रायः समझ नहीं पाता था। अद्भुत बात तो यह है कि आज मेरे पास स्वर्गीय पिता है, और मैं बहुत समय तक शिशु अवस्था में रहा हूं, और उसने मुझे कहा कि मैं उस स्थान में रखा गया हूं जहां मैं उसकी बात समझ सकता हूं। वह दिन कैसा आनंद का समय होगा जब आप बड़े हो जाएं और आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातों को समझ पाएं। तथापि परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है, हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यह सब हमारे लिए मसीह यीशु में किया गया है। पहला तिमोथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही विचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। ध्यान दीजिए, क्योंकि सब परमेश्वर की महिमा के निमित्त हैं। पौलुस यह महिमामय स्तुति गान गाता है, यह अद्भुत स्तुति का भजन भी है। सब कुछ उसके अनुग्रह के आधार पर होता है और परिणाम परमेश्वर का महिमान्वन करना है। हस्तक्षेप अनुग्रह का है, धारणा लेपालक होने की है, और स्वीकारण उसकी महिमा के निमित्त है जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया है। यह प्रिय कौन है? यह प्रभु यीशु मसीह है, वही जिसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 24 पद में, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर विश्वासी को मसीह में देखता है और वह विश्वासी को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे अपने निज पुत्र को। यही वह अद्भुत आधार है जो मुझे स्वर्ग में पहुंचाएगा। मैं अपनी योग्यता पर नहीं केवल उस प्रिय में स्वीकार्य हूं। परमेश्वर मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना वह प्रभु यीशु से करता है, क्योंकि मैं मसीह में हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 23 पद में यीशु ने प्रार्थना की थी, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तू ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मेरे मित्रों, इस प्रकार पिता परमेश्वर ने 3 गुना कार्य किया। उसने हमें मसीह में चुना, उसने हमें पुत्र होने के लिए पहले से ठहराया, उसने हमें उससे प्रिय में स्वीकार्य बनाया। यह परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा की स्तुति भी है। वही है जिसकी स्तुति हो, उसी ने यह सब कुछ किया है। यह सब आपकी और मेरी भलाई के लिए है। मैं इसमें उल्लास करना चाहता हूं। आनंद मनाना चाहता हूँ, मैं इसकी चर्चा करता हूँ, क्योंकि यह चर्चा के योग्य है। यह धर्म के नाम पर हो रहे प्रचारों से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमें मसीह में प्रकट परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे अंतर्ग्रहण करना आवश्यक है। मेरे मित्रों, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आज इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिन तीन बातों को आज हमने वचन में सुना है, इसे हम अपने जीवन में आने दें। इस बात को जान ले कि आप ठहराए हुए विश्वासी हैं। परमेश्वर ने आपको उद्धार देने के लिए अलग किया है, और वह चाहता है कि हर एक मनुष्य जो इस बात को रियलाइज करता है, जो इस बात को महसूस करता है कि वह पापी है, और जो उसके पास में आता है, निश्चय जाने कि वह उससे उद्धार देता है बिना किसी मूल्य के। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, वह आपसे प्रेम करता है। वह आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए तत्पर और तैयार है। क्या आप चाहते हैं कि आप उसके पास आएं और छुटकारा पाएं? यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक डॉक्टर ने एक रोगी को दवा दी और उससे कहा कि तुम इसे खाओगे तो बच जाओगे, लेकिन रोगी ने उस पर संदेह किया और मर गया। क्या आज आप भी चाहते हैं कि आप पाप में अपना जीवन अंत कर दें, या आप चाहते हैं कि आप बच जाएं और स्वर्ग में जाएं? निर्णय आपका है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, आप एक सही निर्णय लेकर अपने जीवन को अनंत जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे एवं सहायता दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। अच्छा चरवाहा बन के तूने मुझे तब ढूंढ लिया। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा वचन मैं सुनाऊंगा। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा वचन मैं सुनाऊंगा। प्यारे प्रभु।